ओम शांति। किसी एक सम्राट को कभी भगवान को पाने की इच्छा उत्पन्न हुई और इसलिए वह कई सारी जगहों की यात्रा कर जब असफल रहा तो एक सूफी फकीर के यहां पहुंचा जिसके बारे में उसने सुना था कि जो भी इसके पास जाता है वह परमात्मा प्राप्ति कर लेता है। तो सम्राट उसकी कुटिया में गया और अपनी इच्छा व्यक्त की। तब उस फकीर ने कहा कि इससे पहले कि मैं परमात्मा की चर्चा करूं तुम्हें यहीं रहना होगा और यहीं राजधानी में ही 7 दिन तक भिक्षा पात्र लेकर भिक्षा मांगनी होगी। यह सुनकर राजा को थोड़ी झिझक हुई परंतु प्रभु को पाने की इच्छा तीव्र थी और इसलिए वो मान गया। परंतु उसने प्रश्न पूछा, यदि मैं यहां न भीख मांगकर कहीं और भीख मांगू तो? क्योंकि अपनी ही राजधानी में मुश्किल है। परंतु फकीर ने कहा यही भीख मांगनी पड़ेगी। पहले तो मना किया पर बाद में राजा मान गया, वही रहने लगा। 7 दिन रोज भिक्षा पात्र लेकर उसी नगर में भिक्षा मांगने लगा जहां का वो सम्राट था। वही रहने लगा, वही सोने लगा, वही खाने लगा। 7वां दिन था। भिक्षा पात्र लेकर जब आ रहा था वापस तो अचानक एक व्यक्ति टकराया जोर से और भिक्षा पात्र नीचे गिरा। राजा ने आंखें लाल हो गई राजा की और कहा कि अंधे हो क्या, दिखता नहीं है? और बहुत कुछ कहा अशोभनीय। भिक्षा पात्र फिर उठाया और उसी रोष और उसी कोप के साथ फिर वापस उसी कुटिया में आया और फकीर से कहने लगा कि 7 दिन पूरे हुए। फकीर ने कहा कि 7 दिन और, अभी समय नहीं आया है। राजा पहले ही क्रुद्ध था, जो उसके साथ हुआ था, एक साधारण सा नागरिक और उसे टकराए इस तरह से। परंतु फिर वो मान गया और फिर 7 दिन भिक्षा मांगी। 7वें दिन जब लौट रहा था फिर से एक व्यक्ति सामने आया और उससे टकराया। फिर से भिक्षा पात्र नीचे गिरा। राजा ने कुछ कहा नहीं इस बार, परंतु आंखें बहुत दिखाई। इसकी यह हिम्मत कि मुझे टकराता है, शायद जानता नहीं है मैं कौन हूं, इसी राज्य का मैं सम्राट हूं। फिर पहुंचा। फकीर ने कहा अभी समय है और, अभी नहीं, अभी और 7 दिन। राजा फिर मान गया। 7 दिन भिक्षा मांगी और 7वें दिन जब लौट रहा था तो वही व्यक्ति जो 2 बार टकराया था फिर से टकराया। भिक्षा पात्र नीचे गिरा। राजा ने कुछ कहा नहीं, आंख भी नहीं दिखाई, पात्र को उठाया, परंतु अंदर कुछ तो हलचल थी। उसी हलचल को लेकर वो कुटिया में लौटा और दूसरे दिन सुबह तक या दोपहर तक वही हलचल कहीं ना कहीं अभिव्यक्त हुई। फिर से शाम को फकीर के पास गया और फकीर से कहा कि अब चर्चा करें, और तब तक उसकी साधना भी सघन होती जा रही थी। जितना जितना वहां रह रहा था, जितना जितना वैभव से दूर था, जितना जितना अंतर्दृष्टि तीव्र हो रही थी, कुछ तो नजर आ रहा था, कुछ तो दिखाई पड़ रहा था, वो जो कभी राजमहलों में नहीं दिखाई पड़ा, वह जो अति सूक्ष्म है और जो शायद वह बाधा थी। फकीर ने कहा, अभी नहीं, अभी भी टाइम है, और 7 दिन। परंतु अगले 7 दिन राजा बहुत ही शांत है। अगले 7 दिन संपूर्ण अंतर्मुखी हो गया है, जैसे जीवन के किसी रहस्य का उद्घाटन हुआ है। फिर 7 दिन भिक्षा मांगता है और फिर लौटने लगता है तो फिर से वही व्यक्ति टकराता है। परंतु इस बार क्या होता होगा? इस बार चेहरे के भाव नहीं बदले, शब्द नहीं निकले, प्रसन्नता है। नीचे झुका, भिक्षा पात्र उठाया और धन्यवाद दिया कि अवसर दिया है आपने स्वयं को परखने का, स्वयं को जानने का, स्वयं को समझने का, स्वयं का एक्सरे करने का। और राजा लौटता है उसी प्रसन्नता, उसी अहोभाव, उसी कृतार्थता के साथ, उसी धन्यवाद के भाव के साथ और उसी थैंकफुलनेस के साथ। और तब वो फकीर कहता है कि अब तुम क्या हो? तैयार हो। किस लिए तैयार हो? परमात्मा को पाने की जो साधना है, वो साधना करने के लिए तैयार हो। पहला महान क्रोध, दूसरा जोश, और तीसरा चिड़चिड़ापन। तो इस शिवरात्रि को क्या सौगात देना है बाबा को? बाबा ने कहा हिम्मत चाहिए। अगर ऐसी सौगात उसे देनी है तो क्या चाहिए? हिम्मत। पहले तो कहा ये मनाने का दिवस है, परंतु ये मनाना कहीं भारी तो नहीं पड़ रहा है? क्योंकि साथ साथ क्या करना होता है? कुछ तो देना है उसे, गिफ्ट, सौगात, उपहार। कौन सा उपहार चाहिए उसे? आज की मुरली से क्रोध का अंश भी ना रहे। जोश की गंगोत्री कहां से बहती है? जोश की सूक्ष्म घृणा किनारा कर देते हैं, बात नहीं करते, सामना नहीं करते, आगे बढ़ने नहीं देते। शुभ भाव और शुद्ध प्रेम व शुभ प्रेम इमर्ज नहीं होता है, मूड ऑफ हो जाता है। और कहते क्या है बाद में, इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आज थका जाता है। कहां से उत्पन्न हो रहा है? सूक्ष्म घृणा से। शायद शुभ भाव कम है, शायद भावनाएं कम है। शुद्ध सुबह हम बात कर रहे थे उस जहाज की, हम नौका विहार कर रहे हैं, हम नौका में बैठे हुए हैं और अचानक एक दूसरी नौका जिस पर कुछ लोग सवार है वो आकर हमारी नौका से टकराते हैं, उनकी नौका हमारी नौका से टकराती है तो क्रोध जन्म लेता है। कहते हैं दिखता नहीं है, परंतु वहां खिवैया है, उस खिवैया पर चिल्लाते हैं, चिढ़ते हैं। परंतु यदि एक खाली नाव आकर हमारी नाव से टकरा जाए तो क्या हम क्रोधित होते हैं, तो क्या हम चिल्लाते हैं, तो क्या हमारा चित्त कोपित होता है? क्यों? उस नाव में कोई बैठा नहीं है, पहली नाव में कोई बैठा था, दूसरी नाव में कोई बैठा नहीं है, उस पहली नाव भी टकराई और दूसरी नाव भी टकराई, फिर भी पहली नाव पर हम क्रोधित है और दूसरी नाव पर नहीं, क्यों? मैं से जहां खाली है, क्रोध का संघर्ष वास्तव में क्रोध का अंधकार मैं का अंधकार है, क्रोध का द्वंद मैं का द्वंद है। जहां मैं से रिक्त है आत्मा, वहां पर दूसरे भी क्रोधित नहीं होंगे। हमारा मैं ही टकरा रहा है उनके मैं से, मैं से टकरा रहा है, स्वभाव स्वभाव से, संस्कार संस्कार से, शब्द शब्द से, बोल बोल से टकरा रहे हैं। और उस क्रोध को जन्म दे रहे हैं। तो शिवरात्रि में क्या करना है, बाबा को ये गिफ्ट देनी है तो बाबा भी रिटर्न में क्या दे देगा, एक्स्ट्रा मदद देगा। और शब्द कौन से बोलने हैं? मीठा बाबा, बाबा भी नहीं, कौन सा मीठा बाबा, तो क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। तो बाबा शिवरात्रि पर आए हैं, सेवा साथियों के साथ, जन के साथियों के साथ, जन दिन के साथियों के साथ यह जन्मगांठ वर्षगांठ मनाने। और किस चीज की वर्षा कर रहे हैं हम पर, परम प्रेम की और अलौकिक स्नेह की वर्षा कर रहे हैं। और गले में क्या पहना रहे हैं, कौन सी माला पहना रहे, माला पहना रहे हैं भगवान हमारे गले में। तो सभी ने पहनी है माला, कल परसों है, अभी पहनी हुई, सजे हुए हो माला से। अगर माला को देखो तो कौन याद आए, जिसने माला पहनाई है, मालाधारियों को देखो तो जिसने माला पहनाई है वह याद आए। ये माला को बढ़ाने की विधि क्या है, इस माला को बार बार देखो, कैसे देखो इस माला को, न्यारे होकर इस माला को देखो, न्यारे होकर इस माला को देखो, कौन से फूल है और कौन से धागे है इस माला में। भगवान पहना रहा है माला, सतयुग त्रेता में देवी देवताओं ने माला पहनाई, द्वापर कलयुग में भक्तों ने माला पहनाई, उसी का ही यादगार है, तुलसी की माला, चंदन की माला, फूलों की माला, रुद्राक्ष की माला, मोतियों की माला, हीरो की माला, पत्तों की माला, नोटों की माला, कागज की माला, वो भी तो है। तो माला, वरमाला, वनमाला, विजयमाला, जयमाला सब पहनाई है बाबा ने। माला, ओरिजिनल माला पहनाई, क्या कहा बाबा ने, माला का परिचय दिया है, ओरिजिनल माला पहनाई है, डायरेक्ट खुद, अरे अरे क्या, बाप ने हमारे लिए माला बनवाई है। तो भगवान माला पहना रहा है। दिल में कौन आ गया? भगवान आ गया, बाप दिल में आ गया। दिल में खुशी कितनी है प्रश्न पूछा है बाबा ने, कितनी खुशी है? बात मत पूछो, कितनी खुशी है? अगणित। कितनी खुशी है? अथाह खुशी। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं, गीत है ना, प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं। चरणों में जगह मांगी थी तूने, दिल में बसा लिया। तो ऐसी खुशी, ऐसा स्नेह, ऐसा अलौकिक स्नेह, क्या कहा आज, अलौकिक स्नेह और परम प्रेम की वर्षा बाबा कर रहे। और जिन्होंने हिम्मत रखी है उनके ऊपर कौन सी वर्षा कर रहे? प्रेम की, ज्ञान की, सुख की और शांति की, उन पर वर्षा हो रही है। ऐसा उसका प्यार, खुशी का मेला। सभा में क्या है? खुशी का मेला। माला से सब सजे हुए, माला माल। तो कौन कौन सी माला है उसने पहनाई है? वो अदृश्य माला है, वो सूक्ष्म माला है, परंतु ऐसी सुगंधित माला और कहीं नहीं। कौन सा वो धागा है? बाबा ने कहा एक तो मालिक स्वयं चमक रहे हैं, तीन प्रकार बताए ना, दूसरा फूलों की माला और तीसरी बाहों की माला, परमात्मा प्रेम की माला। इसी माला को पहने रहना, इसी माला से सजे हुए रहना। अगर ऊपर नीचे होते रहे तो शो नहीं है, अगर ये महार पड़ा हुआ हो तो माया वार नहीं करेगी, हार जाएगी। अगर ये माला हार पड़ा हुआ तो माया भाग जाएगी। माला पड़ी हुई हो तो माया भाग जाएगी। याद रहे कंपनी किसकी और कंपेनियन कौन है, कौन साथी है और किसका साथ है, अगर ये भी याद रहे तो किसी और की तरफ मन बुद्धि फिर नहीं जाएगी, फिर माया नहीं आएगी। ऐसी निर्विकार अवस्था, मैं तुम बच्चों का सहारा हूं। आज की मुरली में महावाक्य है, कभी न भूलना इसको। क्या कहा बाबा ने? मैं तुम बच्चों का सहारा हूं, या फिर मैं तुम बच्चों का एकमात्र सहारा हूं। तुम नटखट होते हो, तुम किनारा करते हो, परंतु ये सहारा, ये कंपेनियन ऐसा है कि कभी भी किनारा नहीं करता। संबंधों की बात आज बाबा ने कही है, तीन महत्वपूर्ण बातें उसमें है। सर्व संबंधों का सुख लो, क्या कहा बाबा ने? बाबा से सर्व संबंधों का सुख लो, सर्व संबंधों का अनुभव करो, और तीसरा सर्व संबंधों को कार्य में लगाओ। जब इतना श्रेष्ठ साथी है फिर ये निरस्ता क्यों, फिर ये अकेलापन क्यों, फिर ये वाय क्यों? बाबा को वाय पसंद नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा है उसमें, वाय शब्द में, क्यों में, ऐसा क्यों? ऋणात्मक ऊर्जा। और पॉजिटिव कौन सा है फिर? फ्लाय, उड़ना। निगेटिव है ना जी, और पॉजिटिव है हाँ जी। जहां जहां निगेटिव है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा है, धनात्मक ऊर्जा और ऋणात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव और निगेटिव। तो हाजी किसको करना है? आत्माओं को हाजी करो, और नाजी नाजी किसको करो? माया को नाजी नाजी करो। तो ये हार अगर पड़ी रहे तो माया भाग जाएगी, ये हार अगर पड़ा है तो माया की हार हो जाएगी। किस माला की बातें हम कर रहे हैं? ज्ञान की माला, ज्ञान रत्नों की माला, गुणों की माला, शक्तियों की माला, पवित्रता की माला, संतुष्टता की माला, दुआओं की माला, खुशी की माला, अतीन्द्रिय सुख की माला, श्रेष्ठ कर्म की माला, वरदानों की माला, सर्व प्राप्तियों की माला, और कौन सी माला है? विजय की माला। बाबा ने हमको क्या पहनाई आकर? विजय की माला, विशेषताओं की माला, संपूर्णता की माला, संपन्नता की माला, समीपता की माला। बाबा ने कहा माला को बढ़ाने की विधि है, माला को देखो, न्यारा होकर देखो, साक्षी होकर देखो। इस माला को साक्षी होकर देखो कि मेरे गले में कौन कौन सी मालाएं पड़ी है। माला का ज्ञान, कौन कौन सी माला है वो केवल स्मृति में लाना, किसने डाली है माला, केवल यह स्मृति मालाओं को क्या कर देगी? बढ़ा देगी। सजे सजे लाल लाल, कैसे दिख रहे हैं सभी? लाल लाल। क्या ऐसी मालाएं हमारे गले में पड़ी है? क्या वह ज्ञान का निरंतर चिंतन हो रहा है? क्या ज्ञान के उस गहरे तल पर हम पहुंचे हैं? क्या यह रत्नों से हम सजे सजाए हैं? क्या वह दिव्य गुण, चेहरे और चलन, सभ्यता, बाबा ने आज बात कही है, सभ्यता, ब्राह्मण कुल की सभ्यता, कम धीरे और मीठा, बोलो, चेहरे और चलन से उसको प्रत्यक्ष करो। ऐसी दिव्य गुणों की माला क्या पड़ी हुई है? क्या ऐसी शक्तियों की माला पड़ी हुई है? क्या ऐसी वरदानों की माला, क्या यह वरदानों की स्मृति निरंतर बुद्धि में है? क्या दुआओं की माला हमने पहन रखी है? कल भाई साहब कह रहे थे ना, सूरज भाई जी, बद्दुआओं की माला तो नहीं पहनी है? आत्माओं की दुआएं, कितनी आत्माओं को सुख दिया है, परमात्मा दुआएं, स्वयं की दुआएं, दुआएं बहुत बड़ा खजाना है। इन दुआओं की माला स्वयं को पहनाना है, और उसकी विधि है आज ही की मुरली में हाजी, आत्माओं को हाजी। तो क्या होगा? आत्माओं से दुआएं मिलेगी। तो गुणों की माला, शक्तियों की माला, वरदानों की माला, सर्व प्राप्तियों की माला, उसने सब कुछ दिया है। आज ही की मुरली में बाबा गीत सुन रहे हैं, बैंड और बाजे खुशी के सुन रहे हैं, दिल से पाना था सो पा लिया, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, अनुपलब्ध, अनअटेंड, अनऑप्टेंड कुछ नहीं। अब जो चाहा था वो मिला, जो पाना था वो पा लिया, जिसकी तमन्ना थी वो मिल गया। यह भाव, वह पूर्ण काम का भाव। अब एक ही इच्छा बाबा ने कहा उसको प्रत्यक्ष करने की। जीवन उस पूर्णता को पाया है, जीवन उस धन्यता को पाया है कि संसारिक इच्छाएं, संसारिक तृष्णाएं और संसारिक वासनाएं जहां समाप्त हो गई है। क्या ऐसा भाव हमारे मन में है? वरदानों की माला, दुआओं की माला, पुण्य कर्म की माला, क्या हमारे हर कर्म श्रेष्ठ है या उसमें अभी भी वही शूद्रपन झलक रहा है? ब्राह्मण कुल सर्वश्रेष्ठ कुल है, सर्वश्रेष्ठ कुल की यह सभ्यता, यह कल्चर है। पवित्रता की माला, जैसे काम महाशत्रु है वैसे क्रोध भी महाशत्रु है। क्या ऐसी संपूर्ण पवित्रता, ऐसी संपूर्ण निर्विकारिता का भाव जहां पर ना तो महान क्रोध है और जहां पर जोश भी नहीं और चिड़चिड़ापन भी नहीं और अंश भी नहीं और सूक्ष्म घृणा भी नहीं। ऐसा चित्त शुद्ध प्रेम और शुभ प्रेम से भरा हुआ है। ऐसी दिव्यता, ऐसी पवित्रता, इस पवित्रता की माला के हमने धारण की है या अब भी पवित्रता बार बार खंडित होती है? अब भी यह देह खींचता है? क्या चेतना इस देह के भान से परे गई है? पवित्रता की माला, अतीन्द्रिय सुख की माला, इस संगम युग पर अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं है तो क्या किया, तो क्या पाया इस देह से उपराम होने का अनुभव? आत्मा अपने विशुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाए, अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो जाए, वह अनुभव, वह सुख जो इंद्रियों की सहायता बगैर लिया जाए, ऐसा सुपर सेंशुअल ब्लिस, आनंद, सुख, वह रैप्चर क्या हमारे जीवन में भरा है? स्वयं स्वयं को देखना है, शत्रु बाहर नहीं, व्यक्ति नहीं, परिस्थिति नहीं, हमारे ही अंदर है। ये विकार ही है, इन्हीं से स्वयं को मुक्त करना है। श्रेष्ठ स्मृतियों की माला, श्रेष्ठ स्मृतियां, समर्थ स्मृतियां, शक्तिशाली स्मृतियां, हायर कॉन्शियसनेस, वह माला है। जितनी स्मृतियां ऊंची होगी उतना ही देह का भान कम, जितना संसार का चिंतन होगा और परक चिंतन होगा वहां पर देह भान अधिक और द्वंद की अवस्था। ऐसी श्रेष्ठ स्मृतियों की माला, वरदानों की माला, खुशी की माला, खुशी की माला। कौन है जो हमारे खुशी को छीन ले जाता है? ढूंढ रहे हैं क्या है ऐसा जो आता है? कौन सी वो काली छाया है जो आती है और खुशी को छीन कर ले जाती है? कौन सा वो आवेश है और कौन सा वो भाव है? कौन सी वो उद्विग्नता है, कौन सी वो एक्साइटमेंट है जो चित्त की शांति को हरण कर ले जाती है? अर्मेनिया में एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है, जॉर्ज गुर्जियफ। उसने अपने जीवन वृत्तांत में एक बहुत सुंदर घटना लिखी है। उसके कुछ कुछ सिद्धांत बाबा ने कहे हुए सिद्धांतों से मिलते हैं। द फोर्थ वे नाम दिया है उसने अपने सिद्धांत का, द फोर्थ वे। उसने लिखा है कि मेरे जीवन में जब मैं बहुत छोटा बच्चा था और मेरी मां मर रही थी, उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, एक सूत्र हमेशा याद रखना, जीवन भर कभी ना भूलना इसको। जब भी तुम्हें क्रोध उठे, जब भी तुम्हारे चित्त में क्रोध की ज्वाला उठे, भग्नि तुम्हें घेर ले, जब भी जोश आ जाए किसी व्यक्ति के ऊपर, उस व्यक्ति का उत्तर 24 घंटे के बाद देना, तुरंत मत देना। और उसने लिखा है अपने जीवन कहानी में कि इसी एक सूत्र का मैंने जीवन भर पालन किया। लोग इलॉजिकल, अनरीजनेबल, ऐसी ऐसी मूढ़ता, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं, बातें करते हैं जो क्रोध को जन्म देता है। परंतु जब जब क्रोध आया किसी व्यक्ति पर, परिस्थिति पर, मैंने अपनी माँ की बात वो याद की जब मैं छोटा सा बच्चा था, 7 साल का, और तब मैंने सोचा कि अभी मैं उत्तर नहीं दूंगा, अभी प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, अभी रिएक्ट नहीं करूंगा, 24 घंटे के बाद। 24 घंटे के बाद मैंने पाया वो बात कितनी शूद्र थी, कितनी छोटी थी वो। और उस समय यदि मैं कुछ रिएक्ट कर जाता तो वो जो संबंध है, अब तो मैं धन्यवाद देता हूं 24 घंटे के बाद उस व्यक्ति को, अवसर दिया है उसने किस बात का अवसर दिया है? ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाने का, अचल अडोल स्थिति बनाने का। अगर वो ना होता तो ये कैसे पता चलता कि क्रोध है, अब भी है, छिपा हुआ है। किसी एक साधु के पास, जो कि अपनी साधना गांव में करता था, अपनी कुटिया में, रोज इतने लोग अपने प्रश्न लेकर आते थे। संसारिक व्यक्तियों के जीवन में हजारों प्रश्न रहते हैं, और किसके पास जाते हैं? जो मिल गया अगर कोई साधु तो उसको छोड़ते नहीं है। इतने प्रश्न पूछते हैं कि बात मत पूछो। जीवन अभी भी प्रश्नों में ही उलझा है। ये सूत्र नहीं समझा है कि हर प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं अंदर है। वो साधु परेशान हुआ, उसकी साधना भंग होने लगी, ध्यान में भंग होने लगा। उसने सोचा, मैं इस गांव को छोड़कर चला जाता हूं, और निकल पड़ता है। देखता है एक बहुत सुंदर पहाड़ी है, वहां पर मीठे फल भी है, और पहाड़ी की तलहटी में मीठा सा झरना बह रहा है। बार बार क्रोध, रोज रोज क्रोध, उससे तो इन लोगों से ही दूर चले जाओ, ताकि वो क्रोध जन्म ही ना ले। और वहां से चला जाता है, उस गांव को छोड़कर उस पहाड़ी पर अपनी साधना चालू करता है, और बहुत अच्छा ध्यान करता है और योग करता है, जो उसको आता है वह। और जब भी उसे प्यास लगती है, पहाड़ी से नीचे उतरता है उस झरने के पास, बहुत मीठा सा वो पानी पीता है और संतुष्ट होकर जाता है। एक बार जब वो नीचे उतरता है तो उसका कमंडलू जो होता है, चढ़ते चढ़ते नीचे गिरता है। पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते नीचे आता है, फिर से लेता है और फिर चढ़ता है। दूसरी बार फिर एक पत्थर से टकराता है, फिर से कमंडलू नीचे गिरता है, फिर से क्रोध वही जन्म लेता है। फिर से नीचे उतरता है, फिर से जाता है, फिर से चोट लगती है और कमंडलू नीचे। और जैसी उसकी स्थिति ऐसी एक्साइटमेंट वाली, ऐसी रोष से भरी हुई हो जाती है, एकदम एक परम सत्य का उसके हृदय में जन्म होता है। वह सत्य ये था कि क्रोध, वह कोप, वह रोष, वह एंगर कहीं बाहर से उत्पन्न नहीं हो रहा है, उसका स्रोत अंदर है। काम भागने का नहीं करना है, अंदर करना है। व्यक्तियों पर काम नहीं करना है, स्वयं पर काम करना है, क्योंकि वो अंदर है छिपा कहीं। प्राप्तियों की माला, विशेषताओं की माला, कितनी विशेषताएं उसने हमें दी है। इसी मुरली में 24 तारीख की बाबा ने कहा, अगर बाबा ना हो तो क्या, कहा तो क्या होगा, तो क्या करेंगे? अगर वो ना हो तो, अगर वो चला जाए तो क्या करेंगे? प्रश्न पूछा है एक जगह, बहुत गूढ़ मुरली है। कुछ कुछ बातें तो उसमें अभी तक ऐसी है कि हमें भी अभी समझ में नहीं आई है, 2-3 वाक्य। वो माला है बाबा पहना रहा है, इन मालाओं को देखते रहना है, साक्षी होकर देखते रहना है। अपनी भी मालाएं देखनी है, दूसरों की भी मालाएं देखनी है। माला जिसने पहनाई है उसको याद करना है। माला का यादगार क्या है भक्ति में, उसको याद करना है। कैसे बढ़ाए इन मालाओं को, और कैसे उस संपूर्णता की वह माला भी आ जाए, उसका चिंतन करे। विजय की माला, विजय जीता उसकी खुशी, वह माला, वह जय माला, वह वैजयंती माला, इतनी सारी मालाएं बाबा ने गिनाई है। माला माल कर दिया है मालाओं से, तो शिवरात्रि पर क्या गिफ्ट देना है उसे, आज की मुरली क्रोध का, अंश का। उसके लिए विधि क्या है, काम उस सूक्ष्म घृणा पर करना है। कहां काम करना है, उस सूक्ष्म घृणा, वो सटल डिसलाइक जो किनारा कराती है, जो मूड ऑफ कराती है, जो आत्माओं को आगे नहीं बढ़ने देती, उस सूक्ष्म घृणा पर। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं यहां पर। ड्रामा का ज्ञान, बाबा ने कहा सरकमस्टांस जब आते हैं तब क्रोध आता है, अन्यथा नहीं। तो सबसे पहले ड्रामा की निरंतर स्मृति। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, यह ड्रामा कल्याणकारी है। इस ड्रामा में जो भी हो रहा है वह सत्य है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। ड्रामा न्यायकारी है, विविधतापूर्ण है, वैरायटी है इस ड्रामा में। जो हो रहा है अच्छा ही है, कुछ न कुछ रास तो है, छिपा है उसमें। शायद हमारी आंखें उसे देख नहीं पा रही है, शायद विकारों के पर्दे हैं, शायद पूर्वाग्रह है, प्रेजुडिस, शायद बायस्ड माइंड है, उस वजह से उस सत्य तक पहुंच नहीं पा रही है। दूसरा साक्षी भाव, इस संपूर्ण संसार को साक्षी होकर देखना, बस साक्षी भाव अपने अंदर लाना। जब सभी निर्दोष है तो किस पे क्रोध करे। तीसरा कार्मिक अकाउंट, एक बहुत सुंदर शब्द कवि शिवानी बहन ने अपनी क्लास में प्रयोग किया है, कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम जब आत्माओं के संपर्क में हैं, क्या क्या हिसाब है हमारे उनसे हमें पता नहीं, परंतु अब हमारा यह दायित्व है, अब हमारी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन सभी अकाउंट्स को सेटल करना है, क्लीन करना है, यह हमारा कर्तव्य है, कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक जर्मन यात्री कभी भारत आया एक योगी से मिलने, जिसके विषय में उसने बहुत कुछ पढ़ा था, और उसी तीव्र उत्कंठा से वो भारत में आया। उस योगी की कुटिया के बाहर उसने अपने जूते जोर से निकाले और पटके, थका हुआ था इतने समय की यात्रा, और जोर से दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया और कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उस फकीर ने कहा जाओ जाकर पहले अपने जूतों से माफी मांगो और दरवाजे से माफी मांगो, बाद में अंदर आना। उसने कहा क्या, व्हाट, क्या उनमें भी प्राण है, क्या उनमें भी आत्मा है, क्या उनमें भी चेतनता है, मैं जाकर उनसे माफी मांगू। उसने कहा मैं वरना बात नहीं करूंगा, जाना है तो जा सकते हो। वो जर्मन यात्री बाहर गया, क्या करता, मजबूरी थी, और कहा हे मेरे जूते, बहुत जोर से तुम्हें पटका है, क्षमा करो, हे दरवाजे मुझे माफ कर दो, अगली बार ये गलती नहीं करूंगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। उसने अपने जीवन कहानी में लिखा वो थे मृत चीजें, परंतु उन दोनों ही चीजों को माफी मांगने के बाद मेरा चित्त एक परम शांति को उपलब्ध हुआ, एक अभूतपूर्व शांति का जन्म हृदय में हुआ। हिसाब किताब सभी से, सभ्यता, नए संस्कार, पुराने छोड़ो, याद प्यार में भी कहा है पुराने को एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले मास्टर सिंधु स्वरूप आत्माओं को। तो जिन जिन आत्माओं से हिसाब किताब है वो चुप तो करना है, नए हिसाब अब बनाने नहीं है, फ्रेश बॉन्डेजेस क्रिएट नहीं करने हैं, जो है उन्हीं को नष्ट करना है। कार्मिक अकाउंट्स का ज्ञान कि यहां जो भी हो रहा है हिसाब किताब चुप्त हो रहे हैं। चौथा धारणाएं, बाबा ने हमें धारणाओं का ज्ञान दिया है, श्रीमत दी है, कहा है ये करना है ये नहीं करना है, तुम्हें सहनशील बनना है। 95 की एक मुरली है, बाबा ने कहा ये क्या है, आज्ञा है परमात्मा की, इसलिए नहीं कि हम कमजोर है इसके लिए सहन कर रहे हैं। सहन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रभु आज्ञा है, परमात्मा आदेश है, गॉड्स ऑर्डिनेंस, ये उसका डिक्टेट है, ये उसका हुक्म है संगम पर। पांचवा, योगी जीवन का हमारा लक्ष्य, आज भी कहा लक्ष्य रखो तो लक्षण आएंगे। 3 मास वाले 6 मास वाले दो में डिवाइड किया बाबा ने सभा को, कौन है जो गे गे करते हैं, गा गा करते हैं, छोड़ेंगे, छोड़ना पड़ेगा ये, और दूसरे है 6 मास वाले पतली पतली, क्या माला भी बाबा को अच्छी लगती है, पतली माला भी उसे पसंद है, जिनमें कम से कम है फूल, सुगंध, रंग, रूप, पिछले संडे था ना ज्ञान योग दिव्य गुण, वो भी उसे पसंद है। तो योगी जीवन का महान लक्ष्य स्मृति में हो, योगी अर्थात जय पराजय निंदा स्तुति मान अपमान सब में समान, और अगर परिस्थितियां ये दिला रही है तो ये समझना, अगली विधि है इन परिस्थितियों को पेपर और अवसर समझना, ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाने का, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हमने क्रोध को जीता है, काम को जीता है, प्रलोभन सामने आएंगे, व्यक्ति सामने आएंगे, व्यक्तियों के रूप में सारी माया आएगी, लिखा नहीं होगा यहां पर मस्तक पर मैं माया हूं, ऐसा बोर्ड नहीं होगा, गुप्त रूप से आएगी, परंतु माया का डायग्नोसिस कि ये माया है, जिसे मैं प्रेम कह रहा हूं वो मोह है, जिसे मैं कह रहा हूं ये जरूरी है ये आवश्यक है और रैशनलाइज कर रहा हूं और जस्टिफाई कर रहा हूं, परंतु वो क्रोध का ही अंश है और क्रोध विकार है, दिव्य गुण नहीं, अपनी काम को, अपने ही काम को प्रेम का या सेवा का नाम देना यह भी दुर्बलता है। तो क्या करना है, विकारों का निदान करना है, करेक्ट डायग्नोसिस, ताकि ट्रीटमेंट हो सके। अगर उसको छुपा के रखा तो ट्रीटमेंट नहीं होगी, नासूर होगी बीमारी। इसलिए योगी जीवन का लक्ष्य सामने रखना, अवसर समझना, परिस्थितियों को, व्यक्तियों को, अगर कोई व्यक्ति सामने आता है और वो हमें क्रोध दिला देता है तो उसका धन्यवाद है, किस लिए, परीक्षा लेने आया है, वो आगे बढ़ाने आया है, पास विद ऑनर का स्टैंप लगाने आया है, हमें पता कैसे चलेगा कि क्रोध का अंश है अंदर छिपा बैठा है, शायद वो सूक्ष्म घृणा अब भी बैठी है अंदर। तो सभी मालाओं पर काम करना है, रोज अमृत वेले क्या करना है, एक सूक्ष्म प्रयोग, सूक्ष्म वतन में जाना, बाबा के सामने खड़े रहना और देखना कि बाबा एक एक माला मुझे पहना रहा है, सारे दिन भर फिर हिलना नहीं है, माया का शो नहीं रहेगा, ये माला पड़ी रहे तो ही माया जीत बनेंगे, तो ही माया भागेगी, तो ही माया की हार होगी, तो ही फिर वह क्रोध मुक्त और काम विकार से मुक्त और लोभ मुक्त और अहंकार मुक्त स्थिति बनेगी। वो बदले का भाव, वो घृणा, वो ईर्ष्या, वो द्वेष, वो नफरत आत्माओं के प्रति नहीं उत्पन्न होगी। परंतु एक एक माला बहुत महत्वपूर्ण है। अगर माला नहीं है या माला का कोई मन का खो गया है तो क्या कहा बाबा ने, क्या कहा, लेके जाना कहां से? बाबा के पास से। इस दरबार में सर्व प्रकार की मालाएं हैं। अगर माला नहीं है, अगर माला है परंतु मन का खोया है, यदि फूल है पर धागा नहीं और धागा है और फूल नहीं, तो सब मिलेगा यहां, सब यहां से ले जाना और स्वयं को दिव्य गुणों से, सभी मालाओं से सुशोभित करना। ऐसी सजी हुई जो मालाएं हैं वो बाबा को पसंद है। तो अभी सभी अलर्ट होके बैठेंगे और जो 24 तारीख की मुरली थी और आज की मुरली थी और जो बातें अभी सुनी और जो मुरलियां हमने पढ़ी, उन्हीं को एक योग के रूप में अनुभव करेंगे, उस कंपनी का, उस कंपेनियन का, उस सर्व संबंध का सुख लेंगे, वो सारी मालाएं अपने गले में पहनाएंगे और उसी से सजे हुए रहेंगे। तो सभी चेतना को भ्रुकुटी के मध्य में स्थिर हो करके बैठेंगे। स्वयं परमात्मा को इस संगम युग पर अपना साथी बनाने वाली मैं एक स्नेही आत्मा हूं। भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान चेतना की वह चमकती किरण मैं हूं। धीरे धीरे मैं आत्मा अपने सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप के साथ इस संसार से परे, इन तत्वों से पार, एक अनंत की यात्रा की ओर चल रही हूं। अलौकिक स्नेह, परम प्रेम की वर्षा मुझ पर हो रही है। आकाश से बाहर अंतरिक्ष से होता हुआ सूक्ष्म वतन में हूं। कैसी अलौकिक सभा है यहां, खुशी का मेला, चहोर मालाओं से सजे सजाए बाप दादा की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं एक एक के गले में कितनी मालाएं हैं। मैं आत्मा संपूर्ण न्यारी अवस्था में सूक्ष्म वतन में सकल ब्राह्मण समाज को देख रही हूं। बाप दादा सामने बाबा ही बाबा चारों एक की याद में सभी मगन एक से सर्व संबंध एक वही एक से ही सर्व सुख कैसे ये बाजे बज रहे हैं खुशी के कैसे ये गीत बज रहे हैं। अब पाना कुछ नहीं रहा देख रहा हूं अव्यक्त बाप दादा मेरे नजरों के सामने और मुझे बाबा स्वयं अपने हाथों से वरमाला विजयमाला पहना रहे ज्ञान की माला गुणों की माला शक्तियों की माला संपूर्ण पवित्रता की यह माला खुशी की माला अतीन्द्रिय सुख की माला दुआओं की माला पुण्य कर्म की माला विशेषताओं की माला सर्व प्राप्तियों की माला वरदानों की माला संतुष्टता की माला सर्व प्राप्तियां सर्व खजानों की माला संपूर्णता की माला मैं आत्मा मालिक चमक रही हूं। ये सभी मालाएं चमक रही हैं और अब बाबा मुझे परमात्मा बाहों की माला पहना रहे हैं। प्रभु प्रेम की माला ईश्वरीय स्नेह की माला मैं आत्मा संतुष्ट मणि चमक रही है। इस संपूर्ण संतुष्टता के साथ इन मालाओं की सजावट के साथ मैं आत्मा, हम सभी फरिश्ते आपस में मिल रहे हैं और इसी भाव को लेकर, इसी चित्र और इसी गिफ्ट को लेकर मैं आत्मा धीरे धीरे संपूर्ण श्रृंगारित फरिश्ता सुंदर मालाओं के साथ, शोभनिक मालाओं के साथ धीरे धीरे नीचे आ रही और इस तन में प्रवेश करती हूं। मैं परमात्मा मालाओं से सजी सजाई एक दिव्य आत्मा, यह स्मृति के साथ एक नए जीवन की, नई सभ्यता की शुरुआत करती हूँ।